हरे कृष्णा। कल शयना एकादशी थी। आप में से कई भक्त कल यहां आए, कल के भजन कीर्तन इत्यादि का आनंद आपने लिया और आपने तुकाराम महाराज के बारे में भी सुना देखा। तो कल का जो एकादशी है उसको आषाढ़ी एकादशी भी कहते हैं, शयना एकादशी या देव शयन एकादशी। ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इस एकादशी से चातुर्मास्य आरंभ होता है। चातुर्मास्य यानी चार महीने। ये चार महीने बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए इस चार महीनों के बारे में या इसके महत्व के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। भगवान श्री कृष्ण ने जो सृष्टि बनाई है हम सब बद्ध जीवों के लिए, इस सृष्टि में भगवान ने ऐसी भी व्यवस्था कर दी है कि जो व्यक्ति उनके शरण में जाना चाहे और उनके धाम में लौटकर जाना चाहे वो आसानी से आ सकता है। और ऐसे आतुर जीवों के लिए भगवान ने बहुत सारी योजनाएं दी हैं, जैसे उनका नाम है, उनका अर्चा विग्रह है, उनका प्रसाद है, उनके भक्तों का संग है, शास्त्र हैं जैसे भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम, उपनिषद, वेद, पुराण इत्यादि। तो भगवान ने इतने सारे साधन हमारे लिए दिए हैं उनके प्राप्ति के लिए, लेकिन इसके अलावा भगवान ने और कोई खास ऐसे दिवस भी दिए हैं जिनमें कोई विशेष तपस्या या भक्ति करने से हम भक्ति मार्ग में बहुत ज्यादा प्रगति कर सकते हैं, जल्दी से प्रगति कर सकते हैं। आखिर मनुष्य जीवन का उद्देश्य केवल भगवान की प्राप्ति है और कुछ नहीं। हमारा व्यवसाय, हमारा कुटुंब, हमारा समाज, हमारा नाम इज्जत समाज में, ये सब बाकी की बातें, दूसरी बातें हैं, लेकिन मूल उद्देश्य हमारा है भगवान की प्राप्ति। जो व्यक्ति भगवान को प्राप्त नहीं करता या कम से कम थोड़ी प्रगति भी नहीं करता इस पथ में, उसका जीवन तो व्यर्थ है। इसलिए उन व्यक्तियों के लिए जो कि भगवान की प्राप्ति करना चाहते हैं, भगवान ने ये ऐसे खास दिवस दिए हैं। और उन्होंने शास्त्रों में बतलाया है कि अगर ऐसे दिनों पर आप कोई विशेष तपस्या करेंगे, मेरी सेवा करेंगे, तो आपको भक्ति में बहुत ज्यादा लाभ होगा। हां, इन दिनों के बारे में भगवान ने ऐसे भी कहा है उन लोगों के लिए जो धर्म का पालन करना चाहते हैं लेकिन थोड़ा कुछ भोग भी करना चाहते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए भी इन्हीं दिनों पे तपस्या करने से, कोई खास सेवा करने से उनको भौतिक लाभ भी मिलता है। तो ये लोग भौतिक लाभ के लिए करते हैं, जैसे कि एकादशी और चातुर्मास्य का पालन। लेकिन भगवान के भक्त जो होते हैं उनके हृदय में कोई भौतिक कामना नहीं होती है, इसलिए ऐसे जो उत्सव भक्त जब मनाते हैं तो केवल भगवान को संतुष्ट करने के लिए, भगवान की सेवा करने के लिए करते हैं और व्रतों का पालन भी इसीलिए करते हैं। जो ऐसे लोग होते हैं जो धर्म को एक भोग का साधन समझते हैं वो ऐसे व्रतों का पालन केवल भोग के लिए करते हैं, लेकिन भक्तों की धारणा ऐसे नहीं होती। तो हर एक व्यक्ति को चाहिए कि वो इन उत्सवों को, इन खास दिवसों को अच्छी तरह से जाने और उनमें जो भी विधि विधान है उनका पालन करे, जिससे कि उसका मनुष्य जीवन सार्थक हो सकता है। एकादशी के बारे में चर्चा हम पहले कर चुके हैं, खास करके निर्जला एकादशी के दिवस पर, कि एकादशी का महत्व क्या है, क्यों हमें पालन करना चाहिए, इससे क्या लाभ होता है इत्यादि। कल जो एकादशी थी शयना एकादशी, इसके बारे में संक्षिप्त में हम थोड़ा वर्णन करना चाहेंगे। एक बार युधिष्ठिर महाराज ने भगवान कृष्ण से प्रश्न पूछा कि हे केशव, जो एकादशी आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष में आती है उसका नाम क्या है, और इस एकादशी में कौन से देव आराध्य हैं, हम सब ये जानना चाहते हैं, तो कृपया हमें बतलाइए। तो भगवान कृष्ण ने उत्तर दिया कि हे युधिष्ठिर, यही प्रश्न नारद मुनि ने उनके पिता और गुरु ब्रह्मा जी से किया था। तो ये सारा जो वार्तालाप है, ये वर्णन है इस एकादशी का, ये भविष्योत्तर पुराण में आता है। तो फिर भगवान कृष्ण ब्रह्मा जी नारद को कहने लगे कि एकादशी के व्रत का पालन करना ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे बहुत सारे पापों का नाश होता है और भगवान श्री हरि के प्रति प्रेम जागृत होता है। और जो व्यक्ति एकादशी के व्रत का पालन नहीं करता वो नारकीय अवस्था को प्राप्त होता है, नरक में निश्चित जाता है वो। इसलिए हर एक व्यक्ति को एकादशी का पालन तो करना ही चाहिए, मतलब कम से कम एकादशी के दिवस पर अन्न को नहीं ग्रहण करना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु ने भी इस बात के ऊपर बहुत जोर दिया था। और फिर ब्रह्मा जी कहने लगे कि आज का जो दिवस है इसको देव शयन एकादशी या शयना एकादशी या पद्म एकादशी भी कहते हैं, और ये एकादशी का पालन करने से हम ऋषिकेश को प्रसन्न करते हैं। ऋषिकेश तो भगवान श्री कृष्ण का और एक नाम है। तो ब्रह्मा जी आगे वर्णन करने लगे कि इसका इतिहास इस प्रकार से है, बहुत बहुत साल पहले एक राजा थे जिनका नाम था मंधाता। ये बड़े धर्मपरायण राजा थे और धर्म के सिद्धांतों के अनुसार राज्य का कारोबार संभालते थे। सारी प्रजा उनकी बिल्कुल संतुष्ट थी, और क्योंकि राजा बहुत पुण्यवान थे इसलिए उनके राज्य में कोई भी दुर्घटना नहीं होती थी, हर चीज संतुलित थी, वर्षा ठीक मात्रा में होती थी, कभी अकाल नहीं पड़ता था, कभी ज्यादा बाढ़ नहीं होता था, कभी भूकंप नहीं होता था। सारी प्रजा बिल्कुल संतुष्ट थी, खाने के लिए पीने के लिए सब कुछ पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध था, कोई बीमार नहीं पड़ता था, झगड़े नहीं होते थे लोगों के बीच में, तो सब कुछ बड़ी व्यवस्था से चल रहा था। और सारे लोग राजा को भगवान के समान समझते थे, आखिर राजा को नारदेव जो कहते हैं, नारदेव मतलब नर रूप में मनुष्य रूप में भगवान का प्रतिनिधि, क्योंकि भगवान का शासन वो संभाल रहा है। लेकिन एक बार ऐसे हुआ दैव से कि अचानक बारिश नहीं आई, 3 साल हो गए, और जब बारिश नहीं आया तो अनाज नहीं हुआ, लोग भूखे रह गए, और भूखे होने की वजह से वेदों का पाठ बंद हो गया, यज्ञों का संपन्न होना बंद हो गया, और सारे लोग पीड़ित अवस्था में राजा मंधाता के पास आए और निवेदन करने लगे कि हे राजा, हम सब आपकी प्रजा हैं, भगवान नारायण ये वास्तव में बरसात को बरसाते हैं, हमें वर्षा प्रदान करते हैं जिससे कि अनाज उत्पन्न होता है, अनाज खाकर प्राणी अपना प्राण जो है वो रख सकते हैं, लेकिन अभी अनाज की उत्पत्ति नहीं हो रही है, इसलिए इसका मूल कारण क्या है ये ढूंढ निकालिए और समस्या का समाधान कीजिए। तो राजा ने उत्तर दिया कि हां, आप जो कह रहे हैं सही है, अन्न ये ब्रह्म के समान है, क्योंकि अन्न से ही हमारा पोषण होता है, और इस शरीर से फिर हम यज्ञ कर सकते हैं, भगवान की सेवा कर सकते हैं। मैं तो ये कह नहीं सकता हूं कि हमारे राज्य में ऐसी क्या बात है जिसकी वजह से ये सब दुष्काल पड़ गया है सारे राज्य में। जहां तक मेरी बुद्धि मेरा ज्ञान है चलता है, मैं तो इसका कारण नहीं ढूंढ निकाल सकता। हो सकता है कि कोई पाप किए हो मैंने, क्योंकि ऐसे जब घटनाएं समाज में होती हैं तो ये केवल राजा के पाप की वजह से होती हैं, लेकिन मैंने तो कोई ऐसा पाप नहीं किया है। फिर भी मैं समस्या का समाधान करने का प्रयत्न करूंगा। फिर राजा अपनी सेना को लेकर अपने राज भर में घूमते रहे। जगह जगह वो अरण्यों में वनों में गए जहां बड़े बड़े साधु तपस्या करते थे, और ऐसे भ्रमण करते करते अचानक एक दिन उन्होंने दर्शन किया ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा मुनि का। अपने वाहन से उतर के उन्होंने दंडवत प्रणाम किया अंगिरा मुनि को और मीठे शब्दों में उनकी स्तुति की। अंगिरा मुनि बड़े प्रसन्न हुए, उन्होंने आशीर्वाद दिया राजा को, और फिर राजा ने अपने मन की बात व्यक्त की और कहने लगे कि हे मुनिवर, हमारे राज्य में ये समस्या है कि 3 साल से कोई वर्षा नहीं है और हमारी प्रजा जो है भूख से बड़ी पीड़ित है, और इसका कारण हम ढूंढ नहीं निकाल पा रहे हैं, तो कृपया कुछ इसके ऊपर प्रकाश डालिए और इस समस्या का समाधान कीजिए। तो अंगिरा मुनि ने उत्तर दिया कि हे राजन, ये तो सत्य युग है और इस युग में सारी प्रजा धर्म के चारों अंगों का पालन अच्छी तरह से करती है, जैसे कि सत्य, शौच, कृपा, दया, ये सारी चीजें बड़े अच्छे ढंग से प्रजा पालन कर रही है, और प्रजा स्वाभाविक तौर से भगवान श्री हरि की सेवा करती है। इसलिए यहां जो अब दुष्काल या अकाल पड़ गया है इसमें आपका कोई दोष नहीं है, लेकिन मुझे पता चल सकता है कि एक कोई व्यक्ति जो शूद्र है वो तपस्या कर रहा है, वेदों का पाठ कर रहा है, और इसकी वजह से ये अकाल पड़ गया है, क्योंकि वो अयोग्य व्यक्ति जब वेदों का पाठ करेगा और तपस्या करेगा तो उत्पात पैदा हो सकता है। इसलिए उस शूद्र की आप हत्या करो, फिर सब ठीक ठाक हो जाएगा, वर्षा हो जाएगी। तो राजा मंधाता ने उत्तर दिया कि हे मुनिवर, एक मासूम व्यक्ति की हत्या मैं कैसे कर सकता हूं, मैं तो धर्मपरायण राजा हूं, तो मुझे बहुत मुश्किल लगता है ये करना। तो फिर अंगिरा मुनि ने कहा, तो फिर ठीक है, एक और उपाय सुन लो। आषाढ़ महीने के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी आती है, इसको देव शयन एकादशी कहते हैं, तुम इसका पालन करो, और इसका पालन करने से सारे लाभ तुम्हें प्राप्त हो जाएंगे, भौतिक और आध्यात्मिक, और तुम्हारे देश में, तुम्हारे राज्य में प्रचुर मात्रा में वर्षा होने लगेगी, चिंता नहीं करो। तो फिर से प्रणाम करके राजा अपने राजधानी लौट कर आए और अपने परिवार और सारे प्रजा के संग उन्होंने ये आषाढ़ी एकादशी या देव शयन एकादशी का पालन किया, और उसके बाद बहुत अच्छी वर्षा हुई, फसल हुआ और सारी प्रजा संतुष्ट रही। जो भगवान के भक्त होते हैं वो भगवान के भक्ति के लिए ऐसे व्रतों का पालन करते हैं, लेकिन फिर भी जब भक्त ऐसे करते हैं तो सारे समाज के ऊपर फायदा होता है। आजकल सभी लोग कह रहे हैं देश भर में कि वर्षा नहीं हो रही है, वर्षा कम है, किसान भी सब बड़े चिंतित हैं, लेकिन समस्या ये है कि कोई ये नहीं सोच रहा है कि हम यज्ञ नहीं कर रहे हैं, भगवान को संतुष्ट करने के कार्य हम नहीं कर रहे हैं, हम कोई व्रतों का पालन सही ढंग से नहीं कर रहे हैं, तपस्या नहीं कर रहे हैं, तो फिर कैसे वर्षा होगी? जब यज्ञ नहीं है तो वर्षा नहीं होगा, वर्षा नहीं होगी तो अन्न नहीं होगा, अन्न नहीं होगा तो हम कैसे सुखी रह सकते हैं? तो जब भगवान के भक्त मिलकर नाम संकीर्तन करते हैं, कृष्ण कथा करते हैं, तो फिर सारे वातावरण को लाभ मिल जाता है। विश्वास कीजिए, जितना ज्यादा समाज में लोग अभी ये नाम संकीर्तन करेंगे, भगवान की भक्ति करेंगे और एकादशी और चातुर्मास जैसे व्रतों का पालन भक्ति भाव से, केवल भक्ति के लिए करेंगे, तो प्रकृति में, निसर्ग में किसी भी चीज का अभाव या कमी नहीं होगी, ये निश्चित बात है। लेकिन जब भगवान से विमुख प्रजा हो जाती है तो फिर दोनों राजा प्रजा डूब जाते हैं, नरक की ओर जाते हैं। तो अगर कम से कम यहां बेलगाम में हम इतने सारे अभी एकत्र हुए हैं, कितने होंगे यहां, 500-600 होंगे, अगर केवल हम सब कम से कम यहां पर अच्छे ढंग से जप करेंगे, भगवान की सेवा करेंगे, हमारे व्रतों का पालन करेंगे भक्ति भाव से, तो इससे भी बहुत कुछ फर्क पड़ सकता है सारे समाज को। लोग कहते हैं कि अरे आप क्या भक्ति कर तो बैठ के केवल हरे कृष्ण हरे राम बोलते हो, कुछ प्रैक्टिकल काम आपको करना चाहिए। लेकिन अज्ञानवश ये लोग नहीं जानते कि हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना सबसे प्रैक्टिकल काम है, सबसे लाभदायक काम है। वो समझ नहीं सकते कि एक व्यक्ति बैठकर अगर भगवान का शुद्ध नाम लेता है तो उसका असर कहां कहां तक पहुंचता है। वो इस बात को समझते नहीं है, उनकी उनकी बुद्धि और ज्ञान वहां तक पहुंचती नहीं है। तो एक व्यक्ति शुद्ध जाप करने से उसका प्रभाव इतना होगा, तो मान लीजिए बेलगाम में भक्तों की संख्या अगर ज्यादा बढ़ गई तो कितना लाभ हो सकता है। इसलिए भगवान का भक्त बनना ये केवल निजी स्वार्थ की बात नहीं है। केवल एक आदमी भक्त बनने से वो समाज का कल्याण करता है, बस भले वो और कुछ नहीं करे, अपना व्यवसाय संभाले, घर संभाले, भक्ति करे, केवल इतना करने से बहुत ज्यादा फायदा वो प्रदान कर सकता है सारे समाज को। और अगर इतना करते हुए वो बाहर जाके प्रचार करे, दूसरों को भगवान के भक्ति के मार्ग में लाए, तो फिर कितना और लाभ होगा, कल्पना कीजिए। तो खैर, हमारे सारे समस्याओं का समाधान यही है कि एकादशी जैसे व्रतों का भक्ति भाव से पालन करें, हरिनाम संकीर्तन, कृष्ण कथा, कृष्ण प्रसाद का प्रचुर मात्रा में वितरण करें। प्रभुपाद जी ने, चैतन्य महाप्रभु ने ऐसे सिखलाया है। तो खैर, ये है शयना एकादशी का संक्षिप्त इतिहास। इस प्रकार से यह दिवस इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस एकादशी का पालन करने से चातुर्मास का व्रत आरंभ होता है। शयना एकादशी, ये शयना मतलब इसी दिवस पर भगवान विष्णु या नारायण योग निद्रा में जाते हैं, वो विश्राम करने जाते हैं। भगवान विष्णु किनके ऊपर शयन करते हैं? अनंत शेष के ऊपर, अनंत नाग। गर्भोदक सागर में या क्षीर सागर में अनंत शेष के ऊपर आराम से योग निद्रा में वो रहते हैं और फिर 4 महीने वो ऐसे विश्राम करते हैं। और 4 महीने के बाद कार्तिक महीने में, जो कृष्ण पक्ष में या शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है उसको उत्थान एकादशी कहते हैं। उत्थान मतलब जब भगवान उठते हैं। तो ये चातुर्मास क्या है? ये चातुर्मास, ये 4 महीने हैं जिसमें भगवान विश्राम करते हैं। शयन एकादशी को सो जाते हैं, उत्थान एकादशी को जाग जाते हैं। तो ये है आषाढ़ महीना, कल था एकादशी। तो आषाढ़ के शुक्ल पक्ष के एकादशी से लेकर कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष के एकादशी, ये 4 महीने चातुर्मास कहलाता है। आषाढ़ के बाद आता है श्रावण, फिर भाद्रपद, आश्विन और फिर कार्तिक। तो इस प्रकार से एकादशी से एकादशी 4 महीने ये चातुर्मास होता है। लेकिन कई वैष्णव पूर्णिमा से पूर्णिमा को भी चातुर्मास मनाते हैं, जैसे अभी जो आने वाली पूर्णिमा है, आषाढ़ पूर्णिमा से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक, ये भी चातुर्मास माना जाता है। पुराणों में बताया जाता है कि अष्टमी को, द्वादशी को या संक्रांति को भी आप चातुर्मास का व्रत आरंभ कर सकते हैं। लेकिन हमारी संस्था में पूर्णिमा से पूर्णिमा ये प्रथा का प्रयोग किया जाता है। ऐसे भी कई लोग करते हैं कि सौरी मास जो श्रावण से आरंभ होकर भाद्रपद और फिर आश्विन और कार्तिक के 4 महीने पूरे चातुर्मास कहलाते हैं। चाहे वो चंद्रमास हो या सौर्यमास हो, लेकिन ये चार महीने जो हैं ये चातुर्मास कहलाते हैं और खास करके ये बरसात का मौसम होता है। तो इस चातुर्मास में जो साधु होते हैं, सन्यासी होते हैं, वो ज्यादा भ्रमण नहीं करते हैं, एक ही स्थान में वो रहते हैं। और ये चार महीने भगवान विश्राम करते हैं, उस समय भी इस एकादशी को बड़े धूमधाम से उत्सव मनाए जाते हैं, जैसे कि अभी पंढरपुर में मनाया जाता है। और फिर उत्थान एकादशी के समय भी बहुत उत्सव होते हैं, धूमधाम से वो भी मनाया जाता है कि भगवान अभी उठ रहे हैं। अभी हमें याद रखना चाहिए कि भगवान का सो जाना या उनकी योग निद्रा हमारे नींद से बहुत अलग है। हम जब सोते हैं तो बिल्कुल अज्ञान की अवस्था में हम पड़ जाते हैं, हमें पता ही नहीं चलता कि हम कौन हैं। जब हम सोते हैं हमें याद रहता है कि मेरा नाम क्या है और मैं कौन हूं, मैं कहां रहता हूं, कुछ याद नहीं रहता है। हम बिल्कुल पूरी तरह से तमोगुण के प्रभाव में होते हैं। तमोगुण मतलब अंधकार, अज्ञान। लेकिन जब जाग जाते हैं तो फिर हम नाना प्रकार के कार्य करते हैं, कोई सत्वगुण में कार्य करते हैं, कोई रजगुण में, कोई तमोगुण में। लेकिन नींद यह तमोगुण का कार्य है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ये तो तीन गुणों के अधिष्ठाता देव हैं। मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम, ये सारी प्रकृति जो कि तीन गुणों से बनी हुई है वो भगवान श्री कृष्ण के अध्यक्षता में चल रही है। तो भगवान इन तीन गुणों के स्वामी हैं, वो कभी भी इन तीन गुणों के अधीन नहीं हो सकते जैसे कि हम हैं। हम सब अधीन हैं इन तीन गुणों के। सत्व गुण, रजगुण, तमोगुण के प्रभाव में हम इधर उधर भटक रहे हैं, नाना प्रकार की योनियों में हम जन्म लेते आए हैं अनादिकाल से। लेकिन भगवान कभी भी इन तीन गुणों के प्रभाव में नहीं पड़ सकते हैं। इसलिए हम समझ सकते हैं कि भगवान की निद्रा जो है वो उनकी एक लीला है, इसलिए उसको योग निद्रा कहते हैं। भगवान योग निद्रा में होते हुए भी पूरी तरह से चेतन होते हैं, उनको हर बात का ज्ञान होता है। हम जब सोए हुए रहते हैं हमारे पास में क्या चल रहा है हमको बिल्कुल नहीं पता चलता है। लेकिन भगवान जब सो जाते हैं तो उनके ज्ञान में कोई कमी नहीं होती, उनकी चेतना में कोई कमी नहीं होती, उनकी क्षमता में, योग्यता में कोई कमी नहीं होती है। जागृत अवस्था में जैसे भगवान कोई कार्य कर सकते हैं वैसे ही निद्रा की अवस्था में भी कर सकते हैं। लेकिन भगवान अपनी लीला रचाते हैं, इसलिए भगवान का नाम है नारायण। नारायण शब्द का अर्थ क्या है कोई बता सकते हैं? कई अर्थ हैं वैसे। नारायण शब्द तो बहुत सभी लोग ने सुना है, कितने लोगों के नाम नारायण हैं। लेकिन नारायण शब्द का अर्थ क्या है वास्तव में? भगवान को संबोधित करता है अवश्य, लेकिन इसका अर्थ क्या है कोई बता सकते हैं? नारायण का अर्थ ये, नर मतलब व्यक्ति या पुरुष, लेकिन नर भगवान को भी संबोधित करता है क्योंकि भगवान परम पुरुष हैं, दिव्य पुरुष हैं। इसलिए भगवान श्री हरि वो नर हैं और उनके दिव्य शरीर से जो दिव्य जल उत्पन्न होता है उसको नार कहते हैं, नर से उत्पन्न होने वाला नार। और इस जल में भगवान क्या करते हैं? शेषनाग के ऊपर अयन करते हैं। अयन मतलब विश्रांति लेते हैं या वहां पर निवास करते हैं। तो नार अयन, इसलिए नारायण। तो जो भगवान अपने ही अपने दिव्य शरीर से उत्पन्न हुए जल में विश्राम करते हैं उनको नारायण कहते हैं। दूसरा अर्थ नारायण का यह है, नर मतलब मनुष्य या प्राणी, कोई भी प्राणी हो, जीव हो, उसको नर कहते हैं। और सारे नरों के अयन मतलब आश्रय, वो है भगवान श्री कृष्ण या भगवान। तो नारायण का शब्द ये भी होता है सारे प्राणियों के आश्रय या उनके निवास स्थान। इस प्रकार से नारायण शब्द के अर्थ अलग अलग होते हैं, लेकिन नार अयन मतलब जो जल में जिसने अपना निवास स्थान बनाया है, तो वहां पे जल में उस सागर में भगवान विश्राम करते हैं शयना एकादशी के दिवस पर। और फिर चार महीने ऐसे जब बीत जाते हैं, हमारे चार महीने, भगवान के लिए चार महीने नहीं, हमारे चार महीने जब बीत जाते हैं फिर भगवान उठ जाते हैं और कई प्रकार के उत्सव वगैरह मनाए जाते हैं। भगवान विष्णु के लिए रथ यात्रा मनाई जाती है। हाँ, आज तो प्राय ये उत्सव नहीं मनाया जाता, केवल जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा है उसको हम जानते हैं, लेकिन वैदिक संस्कृति में अलग अलग यात्राएं ऐसे हुआ करती थी अलग अलग उत्सवों के उपलक्ष में। एक बहुत सुंदर लीला हुई थी चतुर्मास के अंत में जब ये रथ यात्रा हो रही थी, और वो है कि जब अर्जुन ने सुभद्रा देवी का अपहरण कर लिया। अर्जुन ने जब सुना कि बलराम जो है वो उनकी बहन सुभद्रा देवी का विवाह दुर्योधन से करना चाहते हैं, तो अर्जुन को अच्छा नहीं लगा, क्योंकि अर्जुन विवाह करना चाहते थे सुभद्रा देवी से। भगवान कृष्ण को भी अच्छा नहीं लगा और यदुकुल में जो भी थे उनको भी अच्छा नहीं लगा, लेकिन बलराम के क्रोध से घबराकर किसी ने कुछ कहा नहीं। तो फिर अर्जुन ने क्या किया, अर्जुन ने एक सन्यासी का वेश धारण किया और द्वारका में आए। द्वारका में आकर उन्होंने चार महीने चातुर्मास के बिताए, जैसे कि एक सन्यासी को करना चाहिए, सारे व्रतों का पालन उन्होंने किया और वैसे रहे। बलराम भी उनको पहचान नहीं पाए, कोई पहचान नहीं पाया उनको, और इस प्रकार से सभी लोगों ने उनको बहुत सम्मान दिया जैसे कि एक सन्यासी को दिया जाता है। अब यह प्रश्न आ सकता है कि बलराम भी तो भगवान है और वो कैसे अर्जुन को पहचान नहीं पाए, ये भी भगवान की लीला है। भगवान कभी कभी अपने आप को भी विस्मृति में डालते हैं, नहीं तो लीला कैसे होगी। अगर भगवान भगवान बन के ही सब लीला करेंगे तो कोई लीला ही लीला नहीं होगी। जब भगवान एक साधारण मनुष्य की तरह कार्य करते हैं तब कुछ लीला में रस आता है। गोवर्धन पर्वत उठाना यह अद्भुत बात हम क्यों मानते हैं, क्योंकि कृष्ण भगवान एक साधारण बालक की तरह व्यवहार कर रहे थे मनुष्य समाज में, और मनुष्य समाज के तुलना से देखा जाए तो किसी व्यक्ति को इतना बड़ा पहाड़ उठाना, वो भी इतने आसानी से और 7 दिन 7 रात तक, ये आश्चर्य की बात है। इसलिए हम ये गोवर्धन लीला याद रखते हैं। लेकिन भगवान के लिए क्या ये आश्चर्य की बात है। जो व्यक्ति अनंत कोटि ब्रह्मांडों को आसानी से धारण करते हैं, उनको कोई उनका वजन नहीं लगता, उनके लिए एक छोटा सा पहाड़ उठाना क्या कोई कठिनाई की बात है, बिल्कुल नहीं। तो इसलिए बलराम जी भी, वो उनकी लीला है, वो पहचान नहीं पाए उनको। और एक बार बलराम ने इस सन्यासी को, तथाकथित सन्यासी को बुलाया अपने घर प्रसाद के लिए। चातुर्मास समाप्त हो गया था, अर्जुन के व्रत समाप्त हो चुके थे, तो अर्जुन आए बलराम के घर, वहां कृष्ण भी थे। उन्होंने सुभद्रा देवी को देखा, उन्होंने सोचा कि मुझे विवाह करना ही चाहिए। सुभद्रा देवी ने भी जान लिया कि ये तो सन्यासी नहीं है, लेकिन बलराम नहीं जान पाए। तो खैर, थोड़े दिन बाद जब ये उत्थान एकादशी के समय या इसके एक समय बाद जो विष्णु की रथ यात्रा निकलती थी, जब वो उत्सव मनाया जा रहा था, तो सारे यदुकुल के निवासी सदस्य वहां पे एकत्र हुए थे, और उस समय अर्जुन ने घोड़े पर बैठकर अपहरण करके सुभद्रा को ले गए। बलराम जी को बड़ा क्रोध आया। बलराम जी के क्रोध से क्या होता है आप जानते हैं ना, सुंदर आपने कई तरह की लीलाएं सुनी होंगी बलराम के क्रोध के बारे में। लेकिन उस समय भगवान कृष्ण ने हाथ जोड़कर उनके सामने आके बड़ा नम्र स्थान लिया, उनके पैर छुए, बड़े भाई कुछ मत करना, सब ठीक ठाक है, शांत हो जाओ। सारे यदुकुल के लोग भी आए, उन्होंने भी बलराम को शांत कराया। फिर बलराम शांत हुए, प्रसन्न हुए, और उन्होंने खुद फिर शादी की व्यवस्था कर ली। तो इस प्रकार से अर्जुन ने भी, लेकिन झूठे ढंग से, ये चातुर्मास का व्रत इस प्रकार पालन किया था और वो उत्सव मनाया था द्वारका में। वैसे सन्यासी या भक्त जो होते हैं इस चातुर्मास के समय ज्यादा भ्रमण करना जो बंद कर देते हैं। हम श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद में सुनते हैं, पढ़ते हैं कि नारद मुनि जब अपने शिष्य व्यास देव जी को उपदेश दे रहे होते हैं तो उपदेश के दौरान वो अपना निजी इतिहास बताते हैं उनको। और कैसा इतिहास? पूर्व जन्मों का इतिहास। और वो कहते हैं कि हे व्यासदेव, इसके पिछले जन्म में मैं एक दासी का पुत्र था और मेरा कोई सहारा नहीं था जीवन में, और ये मेरी मां जो थी बहुत धर्मपरायण स्त्री थी, और एक बार ऐसे हुआ कि हमारे घर में कई साधु पुरुष आए और उस समय चातुर्मास आरंभ हो गया था, और चातुर्मास के समय क्योंकि ये साधु पुरुष भ्रमण करना बंद कर देते हैं तो वह हमारे पास ही वहीं पर रुके, और 4 महीने मुझे इन भक्तों का संग मिला। ये सारे साधु कोई साधारण साधु नहीं थे, भक्ति वेदांत थे, बड़े महाभागवत थे, भगवान के शुद्ध भक्त थे, और दिन भर ये साधु बैठकर एकत्र कृष्ण कथा करते थे, भजन करते थे, कीर्तन करते थे, भगवान की पूजा सेवा अर्चा इत्यादि करते थे। उनको और कोई कार्य नहीं था। इस प्रकार से मैं भी उनके संग में आ गया। मैं दूसरे बच्चों की तरह नटखट नहीं था, हालांकि मेरी आयु उस समय केवल 5 वर्ष की थी, लेकिन मैंने इन महाभागवतों का संग लिया। बड़े भक्ति भाव से चुपचाप में जाकर उनके बीच में बैठता और बड़े ध्यान से भक्ति भाव से उनकी कथाओं को सुनता, कीर्तन में भाग लेता और उनके साथ में सेवा करता और उनकी सेवा करता। और केवल एक बार उनकी अनुमति से उनका अवशिष्ट मैंने ग्रहण किया, उनका महाप्रसाद मुझे मिला, और उसके बाद में मेरे हृदय में भगवान श्री कृष्ण की सेवा करने की दृढ़ इच्छा जागृत हो गई। इन भक्तों ने मेरे ऊपर बहुत बड़ी कृपा की और उनकी कृपा दृष्टि की वजह से मेरे हृदय में भक्ति निष्ठा के रूप में जागृत हो गई, सुदृढ़ रूप में। और जब चातुर्मास समाप्त हो गया तो फिर ये सारे साधु अपने अपने पथ में चल पड़े। मैं बहुत दुखी हुआ उनको देखकर कि वो जा रहे हैं, लेकिन फिर भी वो सब सन्यासी थे, उनको जाना था, अलग अलग जगह भ्रमण करना उनका धर्म था, वो चले गए। लेकिन इन 4 महीनों ने, चातुर्मास के महीनों ने मेरे हृदय के ऊपर इतना गहरा प्रभाव डाल दिया। और थोड़े दिन बाद मेरी मां गाय का दोहन करने जब जा रही थी तो एक सांप ने उसे काट दिया और बेचारी उनकी मृत्यु हो गई और मैं अकेला पड़ गया। और फिर मैंने समझा कि यह भगवान की कृपा है, कि भगवान चाहते हैं कि मैं उनका पूरी तरह से आश्रय ले लूं, और मैंने घर छोड़ लिया और मैं केवल भ्रमण करते रहा, जंगलों में, वनों में, शहरों में, गांवों में, गोचर भूमि में, गौशालाओं में, खेतों में, सब जगह मैं घूमते घूमते रहा, और आखिर मैं एक जगह बैठकर तपस्या करने लगा और भगवान मेरे सामने प्रकट हुए। और फिर भगवान ने मुझे आशीर्वाद दिया और कहा कि इस जन्म के बाद तुम मेरे पास लौटकर आओगे और अगले जन्म में, मतलब इस जन्म में, मैं नारद मुनि हूं, मुझे ये शरीर मिला है जो कि दिव्य शरीर है, और इस दिव्य शरीर से मैं कहीं भी ब्रह्मांड में भ्रमण कर सकता हूं, और इस ब्रह्मांड के बाहर भी मैं वैकुंठ में जाकर भगवान नारायण का दर्शन कब चाहे जब चाहे तब मैं कर सकता हूं, क्योंकि ये मेरा शरीर दिव्य है और मेरा वीणा बजाते हुए, नारायण के पवित्र नामों का गुणगान करते हुए मैं घूमते रहता हूं, लोगों को भक्ति का उपदेश देते रहता हूं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि यहां चातुर्मास का व्रत का पालन करने वाले साधुओं का संग जब मिला और जब खुद उस बालक ने चातुर्मास का फायदा उठाया तो उसका जीवन कितना परिवर्तित हो गया। भगवान श्री कृष्ण जब 500 वर्ष पूर्व चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए तो उन्होंने संन्यास लीला प्रकट की। हालांकि भगवान को विरक्ति की जीवन अपनाने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी प्रचार हेतु उन्होंने संन्यास आश्रम को स्वीकार किया और संन्यास के बाद सबसे पहले वो दक्षिण भारत की यात्रा पर निकले। चलते चलते कई स्थानों में गए, जैसे शिवकांशी, विष्णुकांशी, तिरुमला, तिरुपति इत्यादि। कावेरी नदी के पास आए, फिर पापनाशन नाम की जगह पर आए और अंततः वो आए एक जगह पर जिसका नाम था श्री रंग क्षेत्र, आज ये श्री रंगम के नाम से जाना जाता है। तमिलनाडु में ट्रिची नाम के शहर के पास में है और यहां पर बहुत बड़ा और सुंदर भगवान श्री विष्णु का मंदिर है और वहां पर विष्णु के रूप को रंगनाथ कहते हैं या श्री रंग कहते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु जब वहां पर पहुंचे तो उन्होंने कावेरी नदी में स्नान किया, रंगनाथ जी का दर्शन करने गए, दंडवत किया, बहुत सुंदर स्तुति की, प्रार्थनाएं अर्पण किए भगवान को और अपने आप हृदय में उनको बहुत संतुष्टि हुई और फिर उन्होंने भगवान के सामने कीर्तन और नृत्य करना आरंभ किया। उस समय वहां के एक बड़े विद्वान ब्राह्मण थे जो कि बहुत एक बड़े भक्त भी थे, उनका नाम था वेंकट भट्ट। ये एक श्री संप्रदाय के वैष्णव थे। श्री संप्रदाय मतलब लक्ष्मी जी से आने वाली जो संप्रदाय है वैष्णवों के, उसको श्री संप्रदाय कहते हैं। वैष्णव चार संप्रदाय होते हैं, उनमें से एक है लक्ष्मी देवी का संप्रदाय और इसके प्रमुख आचार्य हैं रामानुजाचार्य और वो प्राय ज्यादा दक्षिण भारत में पाए जाते हैं। हम तिरुपति वगैरह में भी ज्यादा श्री संप्रदाय का प्रभाव देखते हैं, श्री रंगम में खास करके। तो वहां सारे श्री वैष्णव रंगनाथ जी की सेवा करते हैं। तो श्री वैष्णवों में से एक बड़े शुद्ध वैष्णव ब्राह्मण थे वेंकट भट्ट। वेंकट भट्ट ने जब चैतन्य महाप्रभु को देखा और उनसे मिले तो बड़े प्रभावित हुए। खुद तो वेंकट भट्ट भक्त थे और विद्वान थे, जब उन्होंने देखा कि ये सन्यासी भी इतने बड़े विद्वान हैं और इतने बड़े भक्त भी हैं तो उन्होंने चाहा उनका संग प्राप्त करने के लिए। तो उन्होंने चैतन्य महाप्रभु को अपने घर में प्रसाद के लिए निमंत्रित किया। चैतन्य महाप्रभु आए और फिर उन्होंने अपने परिवार सहित चैतन्य महाप्रभु के चरणों को धोया, उसका अभिषेक किया और वो चरण जल जो है उसका पान किया सारे परिवार के सदस्यों ने। देखिए कितनी श्रद्धा, कितनी संस्कृति। हालांकि वो इतने बड़े विद्वान ब्राह्मण और भक्त थे, लेकिन जब उन्होंने एक बड़े सन्यासी और भक्त को देखा तो उन्होंने क्या किया? उस समय तो वो नहीं जानते थे कि ये स्वयं भगवान श्री कृष्ण है। तो खैर, फिर उन्होंने वेंकट भट्ट ने चैतन्य महाप्रभु से कहा कि गोस्वामी जी, अभी चातुर्मास आरंभ हो गया है, बस अभी अभी आरंभ हुआ है, तो आप मेरे निवास स्थान में यह रहने की कृपा करें और मुझे आपके संग का लाभ प्रदान करें। तो चैतन्य महाप्रभु बड़े संतुष्ट हुए और कहा कि ठीक है। और उसके बाद चैतन्य महाप्रभु वेंकट भट्ट के घर में रहे चातुर्मास के समय, पूरे 4 महीने उनके घर में रहे। वेंकट भट्ट इनका एक छोटा लड़का था जिसका नाम था गोपाल और आगे चल के ये गोपाल षड गोस्वामियों में से एक हो गया, गोपाल भट्ट गोस्वामी। 2 रविवार पहले हमने रघुनाथ दास गोस्वामी की चर्चा की थी जो कि षड गोस्वामियों में से एक थे, उनमें से और एक हैं गोपाल भट्ट गोस्वामी। तो जब गोपाल भट्ट गोस्वामी बालक थे तब उन्होंने चैतन्य महाप्रभु का संग प्राप्त किया था, चार महीने लगातार वो भी उन्हीं के घर में रहे थे। तो देखिए गोपाल भट्ट का कितना सौभाग्य था, उन्होंने चैतन्य महाप्रभु की बहुत सेवा की, और जब भी वो अपने पिताजी के साथ में पिता चर्चा करते, भजन करते, कीर्तन करते, तो बालक गोपाल वहां बैठकर उस संघ का लाभ कर ले लेते। तो खैर चैतन्य महाप्रभु का दैनिक कार्य यही था कि वो रोज कावेरी में स्नान करते, रंगनाथ जी का दर्शन करते, वेंकट भट्ट के साथ कृष्ण कथा करते। वेंकट भट्ट हमेशा चैतन्य महाप्रभु को कहते कि हमें कुछ भगवान कृष्ण के बारे में सुनाइए, और चैतन्य महाप्रभु बड़े भाव विभोर होकर ऐसे कृष्ण कथा में मग्न हो जाते। और हर रोज जब चैतन्य महाप्रभु श्री रंग मंदिर में जाते तो कीर्तन करते और बड़े उत्साह से, भक्ति भाव से, प्रेमावेश में आकर नृत्य करते, तो उनको देखकर सारे लोग आश्चर्यचकित हो जाते। और जो भी लोग देखते उनको, केवल उनके कीर्तन को, नृत्य को, उनके हृदय में जो भी शोक, जो भी दुख था वो दूर भाग जाता था। अलग अलग प्रांतों से हजारों की संख्या में लोग आए केवल चैतन्य महाप्रभु का दर्शन करने के लिए, और वो भी भगवान के भक्त बन गए। चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी वर्णन करते हैं कि जब ये लोग आए केवल चैतन्य महाप्रभु के संकीर्तन को देखकर खुद ब खुद उनके मुंह से कृष्ण नाम निकलने लगा, और कृष्ण नाम के अलावा वो कुछ बोलते ही नहीं थे, वो भी भक्ति के भाव में विभोर होकर वो संकीर्तन करने लगे। इस प्रकार से हजारों हजारों की संख्या में लोग कृष्ण भक्त बन गए। उधर वेंकट भट्ट ने अपनी सौभाग्य को देखकर वो विश्वास नहीं कर पाए कि ये मेरे घर में रहते हैं, मुझे इनका संघ का लाभ मिला है, और कई ऐसे चर्चाएं करते रहे। और एक बार जब चैतन्य महाप्रभु रंगनाथ के मंदिर में गए थे दर्शन के लिए चातुर्मास के समय, तो वो एक बहुत प्रसिद्ध घटना घटी, वो कहानी जो शायद आपने कई बार सुनी हो। कौन सा कहानी है वो, कोई जानते हैं? जो ब्राह्मण भगवत गीता पढ़ रहे थे, ये इस समय हुआ जब चैतन्य महाप्रभु वेंकट भट्ट के घर में रहे थे और वो चातुर्मास के व्रत का पालन कर रहे थे। तो जब चैतन्य महाप्रभु वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि ये ब्राह्मण जो है ये भगवत गीता पढ़ रहे हैं, सारे 18 अध्याय वो पढ़ रहे थे, लेकिन क्योंकि उनको सही ढंग से उच्चारण करना नहीं आता था, इसलिए जो दूसरे ब्राह्मण थे वहां वो उनका उपहास करते, मजाक उड़ाते, कोई लोग उनकी निंदा करते, लेकिन ब्राह्मण उनकी परवाह नहीं करता। वो बिल्कुल इतने आनंद में डूबा हुआ था कि उसको कुछ पता ही नहीं चलता था कि ये लोग क्या बोल रहे हैं, बक रहे हैं, निंदा कर रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं, कोई परवाह नहीं थी बिल्कुल। और भगवत गीता पढ़ते पढ़ते सारे 18 अध्याय रोज पढ़ते, और उनके आंखों से आंसू आते, उनके रोंगटे खड़े हो जाते, कंठ गदगद वाक्यों से रुद्ध हो जाता, और इस प्रकार से गीता को सामने लेकर वो ऐसे पढ़ते रहते। जब चैतन्य महाप्रभु ने उनको देखा तो बड़े प्रसन्न हुए, उस ब्राह्मण के पास आकर बोलने लगे कि हे ब्राह्मण, ऐसी कौन सी बात है जिससे कि आपको इतना आनंद आ रहा है? भगवत गीता का कौन सा ऐसा अध्याय है या कौन सा श्लोक है जिससे कि आपको ये आनंद प्रदान मिल रहा है? तो उस ब्राह्मण ने जवाब दिया कि हे गोस्वामी जी, मैं तो एक मूर्ख हूं, अनपढ़ हूं, मुझे तो सही ढंग से पढ़ना भी नहीं आता, उच्चारण की बात तो दूर है। कभी कभी मैं सही उच्चारण करता हूं और कभी कभी मैं मेरा उच्चारण गलत हो जाता है, और लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं, लेकिन मुझे परवाह नहीं। मैं हर रोज सारे 18 अध्याय पढ़ता हूं क्योंकि मेरे गुरुदेव ने मुझे आदेश दिया था, तो मैं इस आदेश का पालन कर रहा हूं। तो महाप्रभु ने पूछा, वो ठीक है, लेकिन फिर आप इतना आनंद कैसे आ रहा है, आप क्यों कांप रहा है, रोंगटे क्यों खड़े हो रहे हैं? तो ब्राह्मण ने कहा कि जब मैं पढ़ता हूं भगवत गीता तो मेरे सामने केवल एक दृश्य आता है, वो है श्यामल सुंदर का। श्यामल सुंदर मतलब भगवान श्री कृष्ण जो कि श्याम वर्ण के हैं और अति सुंदर हैं, वो रथ के ऊपर खड़े हैं और अर्जुन को आदेश दे रहे हैं। ये सुंदर दृश्य मेरे आंखों के सामने आ जाता है और इसके अलावा मुझे और कुछ दिखाई नहीं पड़ता। और जब मैं गीता पढ़ता हूं तो बस मेरे मन में यही बात रहती है, इसलिए मैं किसी भी हालत में भगवत गीता का पाठ करने को बंद नहीं कर सकता मैं, क्योंकि मेरा मन जो है, मेरा हृदय प्रेम से भर आता है भगवान श्री कृष्ण का इस सुंदर रूप का दर्शन करके। तो जब चैतन्य महाप्रभु ने यह सुना तो बड़े प्रसन्न हुए, उन्होंने आलिंगन किया इस ब्राह्मण का, और जैसे ही आलिंगन किया बड़ी असीम कृपा चैतन्य महाप्रभु की उस ब्राह्मण के ऊपर हुई। और वो ब्राह्मण कहने लगे कि मेरा अहो सौभाग्य है, मुझे पता चला है कि आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, क्योंकि मेरा आनंद जो कि पहले ही इतना गाढ़ा और तीव्र था, आपके दर्शन मात्र से और आपके आलिंगन से हजारों गुण बढ़ गया है। इसलिए मैं समझ सकता हूं कि आप स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं, आप मेरे आराध्य देव से भिन्न नहीं हैं, आप ही वही देव हैं। फिर बड़े गुप्त रूप से चैतन्य महाप्रभु ने उस ब्राह्मण से कहा कि हां तुम जो सोच रहे हो वो सही है। और उस समय चैतन्य महाप्रभु ने बहुत सारे गुह्य बातों का उपदेश उस ब्राह्मण को दिया और कहा कि देखो किसी से कहना नहीं कि वास्तव में मैं कौन हूं, ये केवल हम दोनों की बात बीच में बात है। और फिर वो ब्राह्मण चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों में पड़े और चैतन्य महाप्रभु का उन्होंने निजी संग प्राप्त किया। 4 महीने पूरे चातुर्मास में जब भी चैतन्य महाप्रभु संकीर्तन करते, यहां वहां जाते, तो हमेशा वो ब्राह्मण उनके साथ में रहते हैं। तो कितने भाग्यशाली थे वो ब्राह्मण। और जो श्री वैष्णव थे वहां ब्राह्मण, वो सारे चैतन्य महाप्रभु को निमंत्रण देने के लिए आए। चैतन्य महाप्रभु ने इन सारे निमंत्रणों को स्वीकार किया। हर दिन दोपहर के समय वो किसी न किसी एक श्री वैष्णव ब्राह्मण के घर भोजन ग्रहण करने जाते, लेकिन इतने सारे श्री वैष्णव ब्राह्मण उनके पास आ रहे थे निमंत्रण देने के लिए कि सारे ब्राह्मणों के घर वो जा नहीं पाए, क्योंकि तब तक चातुर्मास समाप्त हो गया और फिर चैतन्य महाप्रभु को आगे चलने का समय हो गया। तो खैर इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु ने सारे ब्राह्मणों को संतुष्ट किया। उधर वेंकट भट्ट के साथ रोज चैतन्य महाप्रभु कई घंटे बिताते कृष्ण कथा करते करते। एक बार उनके साथ एक बहुत सुंदर वार्तालाप हुआ जिसका वर्णन कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत में करते हैं, उसका वर्णन हम आज नहीं करेंगे क्योंकि बहुत लंबा संवाद है। लेकिन सार यही है कि जो श्री वैष्णव होते हैं वो भगवान नारायण की पूजा करते हैं और नारायण को श्रेष्ठ समझते हैं और सोचते हैं कि भगवान नारायण से श्री कृष्ण आते हैं, नारायण भगवान के मूल रूप है, वो ऐसा समझते हैं। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने थोड़ा बहुत उनके साथ मजाक करने की इच्छा की और उन्होंने उनको सिद्ध करके दिखाया कि वास्तव में नारायण नहीं, भगवान कृष्ण मूल आदि भगवान है और कृष्ण से ही नारायण आते हैं। तो ये सुंदर वार्तालाप हुआ। कहीं और कोई और रविवार को उस संवाद को के बारे में हम चर्चा कर सकते हैं। अंत में वेंकट भट्ट, उनको भी दृढ़ विश्वास हो गया कि वास्तव में श्याम सुंदर कृष्ण वृंदावन के कृष्ण ही मूल आदि देव हैं, आदि पुरुष हैं, और उन्होंने चैतन्य महाप्रभु के चरणों में आश्रय लिया। इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु ने अपने 4 महीने वहां बिताए। बहुत ज्यादा संकीर्तन करते, कथा करते, प्रसाद के लिए जाते, रंगनाथ जी का दर्शन करते
और इस प्रकार से चतुर्मास समाप्त हो गया तो उन्होंने अनुमति ली वेंकट भट्ट से और आगे चल पड़े। वेंकट भट्ट चैतन्य महाप्रभु से संग से इन चार महीनों में इतने आसक्त हो गए थे कि उनको उनका संग छोड़ने की इच्छा नहीं हो रही थी, इसलिए बहुत दूर तक वो चैतन्य महाप्रभु के पीछे पीछे आए और कहने लगे कि मैं आपका साथ नहीं छोड़ सकता, मैं भी आपके संग चलूंगा। जहां भी चैतन्य महाप्रभु जाते यही चीज होती थी। कूर्म ब्राह्मण वहां आगे वो भी भगवान के साथ चल पड़े थे। महाप्रभु ने कहा था नहीं आप यहीं पर रहो, जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, अमार आज्ञा गुरु हई तार ए देश, अपने स्थान में रहो, केवल कृष्ण का नाम लो और जिसे भी मिलो उसे कृष्ण का उपदेश करो। तो उसी प्रकार से बड़े मुश्किल से चैतन्य महाप्रभु ने बड़े प्रेम से वेंकट भट्ट को समझाया और फिर उनको वापस अपने घर भेज दिया। इस तरह से चैतन्य महाप्रभु श्रीरंग क्षेत्र को छोड़कर दक्षिण भारत और अपनी यात्रा में आगे चल पड़े। जब सारी दक्षिण यात्रा समाप्त हो गई तो चैतन्य महाप्रभु लौटकर जगन्नाथपुरी आ गए। जगन्नाथपुरी में भी चैतन्य महाप्रभु ने चातुर्मास का पालन हमेशा किया। चैतन्य चरितामृत में वर्णन आता है कि किस तरह से चैतन्य महाप्रभु ने चातुर्मास का समय बिताया। इन बारिश के महीनों में बंगाल के जो भी वैष्णव हुआ करते थे वो जगन्नाथपुरी आते थे चैतन्य महाप्रभु के संग को प्राप्त करने के लिए। हालांकि वो चातुर्मास के थोड़ा पहले आते, शयना एकादशी के थोड़े दिन पहले आते ताकि वो जगन्नाथ रथ यात्रा में शामिल हो सके, लेकिन एक बार आते तो पूरे चार महीने यहां रहते और केवल जगन्नाथपुरी में भजन कीर्तन नृत्य कथा दर्शन प्रसाद यही सब चीजें होती थी और कोई चीज नहीं। बड़ी संख्या में लोग आते थे अलग अलग गांवों से और उस समय उस भक्त समाज में कोई संसार की बातें नहीं होती थी। हर एक व्यक्ति अपना अपना संसार भूल जाता था, अपना कुटुंब भूल जाता था, केवल चैतन्य महाप्रभु के संग में जगन्नाथ जी के दर्शन लेते हुए कीर्तन करते हुए वो समय बिताते। और फिर जब चातुर्मास समाप्त हो जाता तो फिर वो सब सारे चले जाते। तो उनके आने के बाद जो भी सारे उत्सव इस चातुर्मास के समय हुआ करते थे वो बड़े उत्साह से हर्ष उल्लास से उनको मनाते थे। सबसे पहला उत्सव जगन्नाथ रथ यात्रा का हुआ करता था जो कि चातुर्मास के थोड़े पहले था, और उसके बाद में अलग अलग ऐसे उत्सव थे जैसे कि बलराम जयंती जो अब थोड़े दिनों में आएगी, उसके बाद में श्री कृष्ण जन्माष्टमी जो कि इस महीने के अंत में होगी अगस्त के अंत में, और फिर उसके बाद राधाष्टमी, आगे चल के दीपावली दशहरा दीपावली, फिर उसके बाद में गोवर्धन पूजा शरद पूर्णिमा, ऐसे बहुत सारे बहुलाष्टमी गोपाष्टमी, इतने सुंदर सुंदर उत्सव इस चातुर्मास के समय हैं। तो ये सारे भक्त चैतन्य महाप्रभु के संग में इन सारे उत्सवों को मनाते। जब भी ये भक्त बंगाल से आते अपने अपने गांवों से अपने अपने घरों से तो चैतन्य महाप्रभु के लिए अवश्य कुछ न कुछ प्रसाद लेकर आते, बड़े भक्ति से उनको बनाकर अपने घर में ले आते। और चैतन्य महाप्रभु के जो सेवक थे जिनका नाम था गोविंद इनको दे देते, और हरेक भक्त कहता गोविंद से याद रखना बताना महाप्रभु को कि मैंने ये प्रसाद बनाया है और उनके लिए खास हमने लाया है। तो गोविंद कहते हाँ निश्चित मैं बताऊंगा। और फिर जब गोविंद जाकर कहते चैतन्य महाप्रभु से कि फलाना भक्त ने ये प्रसाद आपके लिए भेजा है तो चैतन्य महाप्रभु कहते रख लो, रख दो कमरे में। तो ऐसे करते करते सारा कमरा भर गया प्रसाद से, क्योंकि इतने सारे भक्त आए थे सब प्रसाद लेकर आए थे तो पूरा कमरा भर गया। एक दिन गोविंद चैतन्य महाप्रभु के पास आए बड़े चिंतित होकर, बोलने लगे कि प्रभु मैं बड़े दुविधा में हूं, बड़े पीड़ित हूं, बोला भाई क्या बात है? कहने लगा कि हर रोज सब भक्त, वरिष्ठ भक्त से लेकर नए भक्त, सब मेरे पास आते हैं और मुझे पूछते हैं मेरा प्रसाद तुमने खिलाया कि नहीं चैतन्य महाप्रभु को। अगर मैं बोलूं नहीं तो मुझे डांटेंगे, और अगर मैं बोलूं हाँ तो मतलब है कि मैं झूठ बोल रहा हूं और वही भक्तों को झूठ बोल रहा हूं। तो मैं कब तक मैं ऐसे दूसरे भक्तों को धोखा देते रहूं? मैंने तो कहा हाँ हाँ मैंने दिया है, लेकिन आपने तो लिया नहीं है। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा अरे गोविंद, इतने दिन तुम मेरे साथ में रहे हो फिर भी तुम व्यर्थ क्यों दुख करते हो, चलो लाओ सारा प्रसाद ले आओ। तो गोविंद बड़े खुश हो गए, तो सारा प्रसाद ले आए, कमरा भर के प्रसाद जो था सब लाए, और फिर एक एक आइटम जैसे जैसे गोविंद देते गए चैतन्य महाप्रभु को, कहने लगे ये प्रसाद जो है ये आचार्य रत्न ने लाए हैं, ये प्रसाद आचार्य निधि, ये नंदनाचार्य, ये इन्होंने लाया, ये उन्होंने लाया। और चैतन्य महाप्रभु एक के बाद एक हरेक भक्त ने लाए हुए प्रसाद को ग्रहण करते, उस प्रकार से उन्होंने सारे कमरे भर का प्रसाद खा लिया एक ही बार बैठकर। 100 आदमियों का प्रसाद था वहां। और चैतन्य महाप्रभु कहने लगे अब संतुष्ट हो ना, शांत हो गए, अब और कुछ बचा है? कहने लगे हाँ, अभी राघव पंडित का जो झोला है उसमें बहुत सारे व्यंजन है, उन्होंने और उनकी बहन दमयंती ने बनाया हुआ है बड़े प्रेम से आपके लिए। ठीक है, वो अब मैं नहीं लूंगा, वो कल के लिए रखो। और अगले दिन फिर चैतन्य महाप्रभु राघव पंडित की झोली से हर एक व्यंजन को थोड़ा थोड़ा चख लिया, और फिर गोविंद से कहा कि अभी आने वाले एक साल तक मैं इन सारे व्यंजनों का थोड़ा थोड़ा मुझे प्रसाद देते रहना। और इस प्रकार से हर दिवस पे राघव पंडित का बनाया हुआ प्रसाद वो थोड़ा थोड़ा एक साल ग्रहण करते। उस दौरान जो भक्त वहां रहते थे अलग अलग निवास स्थानों में जगन्नाथपुरी में, जैसे चैतन्य महाप्रभु को श्री रंगम में निमंत्रण मिलते चातुर्मास के समय, यहां पर भी लोग उनको निमंत्रण करते कि हमारे घर में आइए प्रसाद लीजिए। तो चैतन्य महाप्रभु हर एक भक्त के घर में जाते, थोड़े भक्त अपने घर में प्रसाद बनाते और जगन्नाथ मंदिर से महाप्रसाद जगन्नाथ जी का लाकर दोनों का मिश्रण करके भगवान को खिलाते चैतन्य महाप्रभु को, और थोड़े ऐसे थे जो केवल जगन्नाथ जी का महाप्रसाद मंगाकर वही मात्र खिलाते थे। तो इस तरह से बड़ी लाइन लग गई थी, हर एक दिन किसी न किसी के घर में भगवान चैतन्य महाप्रभु जाया करते थे। इतने भक्तों की संख्या थी कि कई बार कई दिन 2-3 भक्त मिलकर एक बार प्रसाद देते, और ऐसे कई भक्त रह गए उनको मौका नहीं मिला चैतन्य महाप्रभु को निमंत्रण देने के लिए। कई ऐसे भक्त होते थे जैसे अद्वैत आचार्य, सार्वभौम भट्टाचार्य, उनके घर में खास दिनों पर जो पहले से तय था ऐसे दिनों पर चैतन्य महाप्रभु प्रसाद ग्रहण करने के लिए जाते। चैतन्य महाप्रभु ने ये 4 महीने जगन्नाथपुरी में चातुर्मास का भजन कीर्तन करते हुए बिताया। सारा दिन भर या तो वो जगन्नाथ जी का दर्शन करते हुए कीर्तन और नृत्य करते, या तो गुंडीचा मंदिर में दिन में 3 बार जाकर आंगन में वहां कीर्तन करते भक्तों के संग, या तो भक्तों के घर में प्रसाद लेते। दिन में ये कार्य उनका होता था, सारा दिन ऐसे बीत जाता था भजन कीर्तन में। और रात को जब वो अकेले रहते या केवल अपने निकट के 1-2 भक्तों के संग में रहते तो भगवान कृष्ण के विरह में वो रोते रहते रात भर। तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु ने हरेक चतुर्मास बिताया। एक साल के बाद दूसरे साल, ऐसे कई साल बीत गए, 18 साल ऐसे ही बीतते गए चैतन्य महाप्रभु के। कई बार वो वहां जाकर गुंडीचा मंदिर के पास में जो कुंड हैं, तालाब हैं, उनमें भी जाकर जल क्रीड़ा करते थे अपने भक्तों के संग, बैठ के वहां प्रसाद ग्रहण करते थे। और जब चातुर्मास समाप्त हो गया तो फिर सारे वैष्णवों को बंगाल वापस लौटने का समय आ गया। तो चैतन्य महाप्रभु उनसे कहते हैं कि मैं तो आपको जाने के लिए अनुमति नहीं देने का इच्छुक नहीं देना चाहता, लेकिन क्या करूं, आपको तो जाना है। और वैसे भी मैं आपको मना करना चाहता हूं यह आने के लिए, क्योंकि आपको इतना कष्ट लेकर आना पड़ता है, इतना कठिन पथ है और आपको परिवार को छोड़कर आना पड़ता है, लेकिन मैं आप सबके संग से इतना आसक्त हूं कि आपके संग के बिना मैं रह नहीं सकता। इसलिए आपने इतना कष्ट उठाकर मेरे लिए, मुझे संग देने के लिए आप आए हैं, इसलिए मैं आपका पूरी तरह से ऋणी हो गया हूं। और मैं तो एक साधु हूं, सन्यासी हूं, मेरे पास कुछ ऋण चुकाने के लिए कोई धन नहीं है, मेरे पास केवल मेरा शरीर है। तो आज से मेरा शरीर आपकी संपत्ति हो गई है, तो आप चाहें तो शरीर को बेच सकते हैं, जो चाहें वो कर सकते हैं। तो जब चैतन्य महाप्रभु ऐसी बातें करते तो भक्तों का हृदय पिघल जाता और 5-7 दिन और रह जाते। फिर आखिर अद्वैत आचार्य आकर कहने लगे चैतन्य महाप्रभु से, आप ऐसे बोलते गए तो फिर साल भर यहीं पर भक्त रहेंगे और फिर वापस नहीं जाएंगे। फिर चैतन्य महाप्रभु ने अनुमति दे दी और सारे भक्त लौटकर चले गए और अगले साल चातुर्मास में फिर से आ गए। इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु ने जगन्नाथपुरी में अपने संन्यास लीला में चातुर्मास का समय बिताया। इसका मतलब है कि चातुर्मास के समय हमें ज्यादा से ज्यादा भगवान की कथा, भगवान का नाम संकीर्तन, भगवान की सेवा करने का प्रयत्न करना चाहिए, जैसे कि चैतन्य महाप्रभु ने दिखलाया है अपने उदाहरण से। क्योंकि इस समय जितनी ज्यादा भक्ति हम करते हैं, हमें उतना ही ज्यादा लाभ मिलता है, विशेष लाभ मिलता है चातुर्मास के समय। और यह भी बताया जाता है कि इस समय हमें थोड़े विशेष तपस्या करनी चाहिए, हमारी इंद्र तृप्ति को बिल्कुल कम से कम करना चाहिए और भगवत सेवा को ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए जितना हो सके। वैसे कई इनमें जो तपस्याएं हैं, शायद वो वैष्णवों के लिए उतने उचित न हो या बहुत कठिन भी हो, और ऐसे कई व्रत हैं जो थोड़े वैष्णव करते हैं, थोड़े वैष्णव नहीं करते हैं। जैसे गौड़ी मठ वगैरह हैं, चातुर्मास के समय वहां पर वो लोग दाढ़ी नहीं करते और बाल भी मुंडवाते नहीं, सर मुंडवाते नहीं है। लेकिन इस्कॉन में हम लोग करते हैं, प्रभुपाद जी ने ऐसी पद्धति की, क्योंकि हम बाहर जाते हैं प्रचार के लिए दाढ़ी वाड़ी लेकर जाए, लोग घबरा जाते हैं ना, अरे ये कौन आ गए, इतने लंबा दाढ़ी लेकर आ गए। तो प्रचार की संस्था है तो हमें कभी कभी देखना पड़ता है। प्रभुपाद जी हमेशा कहते थे कि अपने भक्तों को बड़े अच्छे कपड़े पहनकर जाना चाहिए। अच्छे कपड़े मतलब ऐसा नहीं कि महंगे महंगे फैशनेबल कपड़े, अच्छे कपड़े मतलब साफ सुथरे कपड़े जो स्वच्छ हो और जो दिखने से पता चले कि आदमी थोड़ा ठीक ठाक है। ऐसा ना हो कि कहीं हिमालय से उतर को कोई बाबा जी आ गया तो सब लोग घर में उसके पास आने के लिए घबराएंगे। वैसे भी आजकल लोग साधुओं से घबराते हैं। तो खैर, तो ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे नियम होते हैं, ऐसे और कड़क नियम होते हैं जो थोड़े लोग मानते हैं, थोड़े नहीं। जैसे कि दिन में एक बार खाना, कई लोग इतना कड़क ये करते हैं कि वो केवल जमीन पे ऊपर खाते हैं, मतलब कोई पात्र प्लेट इत्यादि नहीं इस्तेमाल करते, सीधे जमीन के ऊपर भोजन डालते हैं, उससे खाते हैं जितना। और ऐसे कोई लोग हैं जो हाथ को पीछे करके मुंह से खाते हैं, जितना एक बार मुंह में आ गया उतना ठीक। ऐसे कई तरह के व्रत होते हैं। लेकिन कम से कम भक्तों को क्या करना चाहिए, हम सब क्या कर सकते हैं इस चातुर्मास के समय? पहली बात, अपना जप ध्यान से करना, जितना ज्यादा हो सके जप करना, जितना ज्यादा हो सके भक्तों के संग में आके कथा कीर्तन भजन में शामिल होना, गीता भागवतों के ग्रंथों का अध्ययन करना, और साथ साथ थोड़ी बहुत सरल तपस्याएं करना, जैसे कि किसी बिस्तर के ऊपर, पलंग के ऊपर नहीं सोना, कम से कम चातुर्मास में नीचे जमीन पर सोइए। हाँ, कोई चटाई लगाकर सोइए, लेकिन पलंग के ऊपर नहीं सोइए चातुर्मास के समय। कम से कम सरल भोजन खाइए और इंद्र तृप्ति को कम से कम कीजिए। और इन 4 महीनों में, हर एक महीनों में एक चीज को हमें त्याग देना है, खाने के पदार्थ को। अब पहला महीना जो है श्रावण, या श्रावण के पहले से भी जो अब पूर्णिमा शुरू होगी आषाढ़ की पूर्णिमा, उससे ही हमें शुरू करना है। इस पहले महीने में हमें हरी सब्जियों का, पालक को हमें त्यागना है। तो इस पूर्णिमा से अगले पूर्णिमा तक कृपया आप पालक मत खाइए। आपको याद रहेगा हर महीने में, चार महीनों में, हर एक महीने में एक एक चीज हम नहीं खाएंगे। उसके बाद में दही एक महीना मत खाइए। उसके बाद एक महीना आप दूध मत पीजिए। और चीटिंग मत कीजिए कि हाँ इसमें कुछ मिला दिया है, कुछ ये कर दिया, अभी पी सकते हैं, नहीं। और चौथे महीने में मांसाहार मत कीजिए। मांसाहार तो वैसे भी नहीं करना चाहिए, लेकिन भक्तों के लिए बताया जाता है कि उड़द दाल नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जिस पदार्थ में प्रोटीन बड़ी ज्यादा मात्रा में होता है वो नॉन वेज के बराबर माना जाता है। इसलिए हम लोग मसूर दाल नहीं लेते हैं, बहुत ज्यादा प्रोटीन ज्यादा होता है इसमें। उड़द दाल में भी थोड़ा ज्यादा होता है, इसलिए इस महीने में हम उड़द दाल नहीं लेते, मतलब आखिरी महीने में, चौथे महीने में। तो ये चार बड़े सरल तपस्याएं हैं जो सभी कोई कर सकते हैं। आप सब पालन करेंगे इनका? सब लोग करेंगे? आपको याद रहेगा पहले महीने में पालक नहीं खाना कि नहीं खाना? नहीं खाना। दूसरे महीने में दही, तीसरे महीने में दूध, चौथे महीने में उड़द दाल, और चारों महीनों में क्या करना चाहिए? ज्यादा भगवान की सेवा करनी चाहिए, जप कीर्तन इत्यादि सब कुछ। और ऐसे तपस्या करने का उद्देश्य क्या है? क्या हमें, हमारा उद्देश्य है कि हम स्वर्ग चले जाएंगे, हमें धन मिलेगा? जो शास्त्रों में जो चातुर्मास की महात्म्या दी गई है उसमें ऐसे कई भी बातें बताई गई हैं कि आप ये व्रत का पालन करेंगे तो आपको ये भौतिक लाभ मिलेगा, स्वर्ग लोक जाएंगे, आपको धन मिलेगा, रोग मुक्त हो जाएंगे। लेकिन भक्तों को इन सब चीजों से कुछ लेना देना नहीं है। भक्त लोग क्या चाहते हैं? वो केवल भगवान की भक्ति करना चाहते हैं। इसलिए जब हम चतुर्मास का पालन करते हैं तो हम केवल भगवान की भक्ति में आगे बढ़ने के लिए करते हैं। स्कंद पुराण में चातुर्मास्य महात्म्य आता है, उसमें यह श्लोक आता है, तथा चैवोत्तम लोके तपः श्री हरि कीर्तनम कलौ युगे विशेषेण विष्णु प्रीत्यै समाचरेत। इसका मतलब यह है कि कलयुग में खास करके हरिनाम संकीर्तन का बहुत ज्यादा महत्व है, और विशेष करके चातुर्मास्य के समय जो भी व्रतों का पालन होता है उनका सार या उनका सबसे महत्वपूर्ण व्रत यही है कि हम श्री हरि का नाम संकीर्तन करें। मतलब चातुर्मास का सबसे महत्वपूर्ण व्रत और तपस्या कौन सा है? हरि नाम संकीर्तन। हरि नाम संकीर्तन ही सारे व्रतों का उद्देश्य है, सारे व्रतों का सार है। यही कलयुग का युग धर्म है। हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम कलो नास्तेव 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 गतिर अन्यथा। कि कलयुग में हरि नाम संकीर्तन के अलावा और कोई रास्ता नहीं है, कोई रास्ता नहीं, कोई रास्ता नहीं। इसलिए इस चातुर्मास के समय हमें ज्यादा से ज्यादा हरि नाम संकीर्तन करने का प्रयास करना चाहिए। आप में से जो लोग हरे कृष्ण महामंत्र का जाप माला के ऊपर नहीं कर रहे हैं, आपसे निवेदन करते हैं कि आप सब माला करना शुरू कीजिए। माला नीचे हमारे स्टॉल में उपलब्ध है। आप में से जो माला करते हैं आप माला बढ़ाने का प्रयास कीजिए, धीरे धीरे से 16 माला तक पहुंचिए रोज। और आप में से जो 16 माला करते हैं कम से कम 16 माला करते रहिए। और इस चातुर्मास के समय अगर आप ज्यादा माला कर सकते हैं तो बहुत अच्छा होगा। और ऐसी थोड़ी सरल तपस्याएं रखिए, अपने जीवन को सरल रखिए और चातुर्मास के पूरे पूरे फायदा का लाभ उठाइए। हरे कृष्णा। हरे
जैसे वैष्णव ने सुना है कि चातुर्मास में कोई भी शुभ काम नहीं करते हैं, शादी विवाह नहीं होते हैं चार महीने, ऐसा क्यों?
वैसे चातुर्मास में मनुष्य को चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा केवल भगवान का भजन करे, संसारिक कामों को कम से कम। वैसे हर एकादशी में ऐसे होना चाहिए और खास करके कार्तिक जैसे महीने में तो और भी ज्यादा, लेकिन फिर भी ये चार महीनों का महत्व है। इन चार महीनों में भक्ति करने से ज्यादा लाभ मिलता है, इसलिए बताया जाता है कि इन चार महीनों में केवल हरि भजन के ऊपर ज्यादा जोर देना चाहिए और अन्य जो भी कार्य हैं उनको ज्यादा जोर नहीं देना चाहिए। अब अगर यहां शादी के मुहूर्त होते रहे कौन हरि नाम करेगा, सही बात है ना, सब इधर उधर केवल ये भाग दौड़ इसमें इंद्र तृप्ति में लगे हुए रहेंगे, बैंड बाजा ये नहीं वो नहीं, हाँ सब धूमधाम धमाका यह सब शहर में बजाएगा, कौन हरि भजन वैसे